Jai Radha Madhava Kunja Bihari.
यह प्रवचन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 पर मुंबई भारत में 7 जून 2004 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारी भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हाय कृष्ण, आज का विषय है भगवद गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। इस श्लोक का संस्कृत इस प्रकार से है, भावनाम ज्ञानमाम अंते ज्ञानमाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वामिति सा महात्मा सुदुर्लभः। यह भगवद गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिससे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवद गीता का उपदेश पूरे मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सारे विश्व में अशांति फैल रही है और हम शांति प्राप्त कर सकेंगे, सुख प्राप्त कर सकेंगे भगवान के शरणागत होकर। इस 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। पिछले 4 श्लोकों में आप सुनते आए हो कि 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण स्वीकार करते हैं। एक है जो दुखी है या पीड़ित है, दूसरा है जो धन की इच्छा रखता है या कोई भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए, तीसरा है जो जिज्ञासु है, और चौथा जो ज्ञानी है। दूसरे शब्दों में जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, बुद्धि है, जिसके द्वारा उसने ये निर्णय किया है कि भरम भगवान की शरण लेने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो भगवान ने समझाया है 7वें अध्याय में, 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं और 4 प्रकार के व्यक्ति नहीं आते। कई भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि वो दुखी हैं, पीड़ित हैं। कई आते हैं क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। कई आते हैं क्योंकि वो जिज्ञासु हैं, कहते हैं चलो देखो क्या है भगवान का संदेश। और चौथे हैं जो कि ज्ञान के आधार पर भगवान के चरण स्वीकार करते हैं। तो भगवान के कह रहे हैं ये 4 के 4 जो हैं ये पुण्यात्मा हैं, क्योंकि कम से कम वो मेरी शरण में तो आ रहे हैं, भगवान के नामों में, भगवान के विग्रह में, भगवान की शिक्षा में, भगवान की लीलाओं में इतनी ताकत है कि बेशक हम किसी भी विचार से भगवान के प्रति आए, इसका हमें लाभ ही है और नुकसान नहीं। एक महान संत श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भक्तियों का जो मार्ग है इतना प्रभावशाली है कि अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग में आंख बंद करके भी दौड़ेगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा। दूसरे शब्द में ज्ञान से अज्ञान से किसी भी माध्यम के द्वारा हम भगवान की सेवा में जुड़े उसमें लाभ भी है। हमारा संबंध भगवान के साथ किसी भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए, पर जब हम भगवान की शिक्षा का पालन करें चाहे भौतिक इच्छाएं हो, अंत में इस विधि के पालन का यह लाभ होता है कि हमारा अशुद्ध हृदय जो है शुद्ध बन जाता है। जैसे कि आपने ध्रुव महाराज की कथा शायद सुनी होगी। ध्रुव महाराज महाराज उत्तानापादा के पुत्र थे और उनके पिता की दो पत्नियां थी। एक दिन 5 साल का बालक ध्रुव पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहा था, जबकि उनकी सौतेली माँ ने उन्हें नीचे गिरा दिया और कहा, तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। ध्रुव महाराज छोटा बालक था, क्षत्रिय खून था, राजा का बेटा था आखिर, तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसे इस घटना को अपमान महसूस किया और रोते रोते गए अपनी माता के पास और माता से जब उन्होंने कहा इस घटना के विषय में, माता ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती, पर भगवान दे सकते हैं तुम्हारा सहयोग। ध्रुव महाराज ने कहा, माता भगवान को मैं कहाँ खोजूं? ये घटना बीती थी 1000 साल पूर्व। तो माता ने कहा, बेटा सुना जाता है कि जंगल में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बेटे ने कहा, ठीक है मैं जाता हूं जंगल में भगवान को ढूंढने के लिए। जैसे वो घर से निकल रहे थे, भगवान ने अपने शुद्ध भक्त नारद मुनि जी को वहां पहुंचा दिया। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपहानम चा। मैं हरे के हृदय में विराजमान हूं परमात्मा के रूप में और मेरे द्वारा भगवान का स्मरण करने की शक्ति प्राप्त होती है और मेरे ही द्वारा व्यक्ति मुझे भूलता भी है। भगवान हृदय में विराजमान है। जैसे कि आप अगर किसी बगीचे से गुजर कर जा रहे हो तो फूल को सूंघने से आप पहचान लेते हो किस प्रकार का फूल है, सच बात है। तो उसी प्रकार भगवान हरे के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं और वो हमारी इच्छाओं को समझ लेते हैं। जब भगवान देखते हैं कि सचमुच ही हम उन्हें खोजना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो हमें उसी प्रकार की संगत प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा हम इसे निभा सकें। और जब भगवान देखते हैं कि हम भगवान को भूलना चाहते हैं, तो फिर हमें उसी प्रकार की सुविधा संगत प्राप्त होती है जिसके द्वारा हम अपहानम भगवान को भूल सकें। भगवान हरि के हृदय में उपस्थित हैं परमात्मा के रूप में। ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि अपनी सौतेली माँ को एक सबक सिखाया जाए। उनकी इच्छा ही प्रकट हुई कि मुझे एक बहुत विशाल राज्य प्राप्त होना चाहिए और मैं ये राज्य को प्राप्त करूंगा भगवान के सहयोग से। नारद मुनि जी पहुंचे वहां। नारद मुनि जी ने कहा, हे बालक तुम कहां जा रहे हो? बालक ध्रुव ने कहा, मैं तो भगवान को खोजने जा रहा हूं जंगल में। नारद मुनि जी ने कहा, हे ध्रुव ये तो भगवान को खोजने की उम्र नहीं है, ये तो खेलने कूदने की उम्र है, बुरी उम्र में भगवान को खोजना। ध्रुव ने कहा, अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो मुझे उपाय दीजिएगा भगवान को खोजने के लिए। अगर आप इस विषय में सहयोग नहीं दे सकते तो मुझे अकेले छोड़ दो और जाने दो। जब नारद मुनि ने देखा कि भक्त ये बालक बिल्कुल दृढ़ है भगवान को खोजने के लिए, तो फिर उन्होंने उन्हें उपाय दिया। एक दिया मंत्र। मंत्र का अर्थ है जिसके उच्चारण से मन को शांति आए। अनादिकाल से हमारे संत महात्माओं ने हमें मंत्र दिए हैं जिनके उच्चारण से व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। एक तो उन्होंने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर उन्होंने ये भी बताया कि भगवान का रूप कैसे मिट्टी और पानी से बनाया जाए, जिसका उन्हें चिंतन करना चाहिए। ध्रुव महाराज ने जंगल में जाकर, मधुवन जंगल ब्रज में है, वहाँ जाकर तपस्या आरंभ कर दी। पहले महीने हर तीसरे दिन वो खाते थे क्या फल जो कि बंदर खाते हैं जंगल में। अगले महीने हर छठे दिन खाने लगे, छह दिन में एक बार, आप और हम तीन बार दिन में खाते हैं, वो छह दिन में एक बार खा रहे थे सूखा घास। तीसरे महीने में घास खाना भी बंद कर दिया, केवल जल पी रहे थे नौ दिन में एक बार। इस प्रकार अपनी तपस्या को बढ़ाते गए, मंत्र का उच्चारण करते गए, और फिर उन्हें भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान उनकी तपस्या से और भावना से इतने खुश हो गए थे कि भगवान ने स्वयं अपने आप को प्रकट किया उनके समक्ष और अपना दर्शन दिया, और ध्रुव महाराज को फिर राज्य भी प्राप्त हुआ, जहाँ की उन्होंने 36,000 सालों के लिए राज्य किया। ये घटना बीती थी सत्ययुग में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हम सकाम भाव से भी भगवान के प्रति शरणागत होने का प्रयास करें, अगर हम भगवान के सेवा में जुड़े रहेंगे, अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे, तो आस्ते आस्ते हृदय की शुद्धि प्राप्त होगी, जिसके द्वारा अंत में आप क्या समझोगे कि भगवत भक्ति ही जीवन का असली लक्ष्य है। यहाँ भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में, भवनाम जन्मनाम अंते, कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। आरंभ में हम भगवान के शरणागत होते हैं चाहे किसी भावना से, पर अगर हम जुड़े रहें, भक्ति का इतना गहरा प्रभाव है कि जीवन की समाप्ति से भक्ति का लाभ समाप्त नहीं होता। भौतिक स्थिति में उदाहरण के लिए मान लो आपने 10,00,000 रुपए जोड़े हैं बैंक में, तो ये नहीं कि आपके अगले जीवन में आपका बैंक बैलेंस 11,00,000 से शुरू होगा, वो 10,00,000 यहाँ ही रह जाएंगे और आप किधर और चले जाओगे। पर भक्ति के विषय में चाहे हम थोड़ा भी करें, 1% भी करें, वो 1% आपके साथ जाएगी। मान लो कि आपने इस जिंदगी में 1% भक्ति की है, तो अगला जीवन आप आरंभ करोगे 2% के साथ। मान लो आपने 50% किया है, तो ये 50% आपके साथ जाएगा। हम जन्म जन्मांतर बहुत से जन्म मृत्यु के पश्चात वो भाग्यवान व्यक्ति है कौन, जो ये जानता है कि मैं ही हूं समस्त कारणों का कारण। तो बेशक आरंभ में हम किसी भौतिक कारणवश भगवान के प्रति आकर्षित हों, भगवान कहते हैं घबराओ मत, चाहे भौतिक चीजें भी चाहिए मेरे पास आओ, पर मेरे पास जुड़े रहो। अगर आपको धन भी चाहिए मेरे पास आओ। तो इस श्लोक में शुद्ध भक्ति की स्थापना की जा रही है। दूसरे शब्दों में ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ये स्वीकार करे कि परम भगवान ही हर चीज के कारण है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ है कठिनाई के साथ, कठिनाई से जो चीज प्राप्त होती है। तो कोई साधारण व्यक्ति कहेगा कि अगर ये इतना दुर्लभ है ये मार्ग, तो हमें इस मार्ग को क्यों स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए? हम तो असफल होंगे। नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे श्रद्धा के साथ तो फिर सफलता की बहुत अच्छी संभावना है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, उनमें जो कमी भी है उसे मैं दूर कर देता हूँ और जो गुण हैं उन्हें मैं रखता हूँ। जैसे कि हम भगवान की बाल लीलाओं के विषय में सुनते हैं कि जब भगवान अपनी बाल लीला कर रहे थे वृंदावन ब्रज में, तो कईयों के मंदिर में घरों में जाकर मक्खन चुराते थे और पड़ोस की गोपियाँ यशोदा माता के पास आती थी शिकायत करने के लिए, आपका बेटा तो बहुत शरारती है, हमारे घर से आकर मक्खन चुराता है। यशोदा माता कहती थी, क्या हमारे घर में क्या मक्खन की कमी है? वो आपके घर से क्यों चुराए? पर इतनी गोपियों ने शिकायत की कि माता यशोदा ने सोचा, अब मुझे एक रस्सी लेकर मेरे बेटे शैतान लड़के को बांधने दो। तो माता ने दी रस्सी और जब रस्सी बांधने का प्रयास किया अपने बेटे को रस्सी के साथ, तो रस्सी थोड़ी छोटी निकली, दो उंगली। फिर एक रस्सी को किसी एक और रस्सी के साथ जोड़ा तो भी वो छोटी निकली। फिर एक और रस्सी के साथ जोड़ा, वो भी छोटी निकली। तो माता निराश हो रही थी, सोच रही थी मैं इतना प्रयास कर रही हूँ बेटे को बांधने के लिए कि अपनी शरारत बंद करे, पर रस्सी हमेशा छोटी निकल रही है। फिर बेटे ने देखा कि माता निराश हो रही है, बेचैन हो रही है, तो बेटे ने माँ को बांधने दिया अपने आप को। तो कहने का अर्थ है, जब भगवान देखते हैं कि हम सचमुच ही उन्हें समझना चाहते हैं, उनके शरणागत होना चाहते हैं, तो वो पूरा सहयोग देते हैं उस भक्त का कि वो इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। तो असली लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हम उस स्थिति पर पहुँचें जहाँ कि हम परम भगवान के शरणागत हो जाएं और यही समझें कि समस्त कारणों के कारण कौन हैं? परम भगवान ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने एक प्रार्थना जिसे हम ब्रह्म संहिता में प्राप्त करते हैं, उसमें कहा, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। कहते हैं ब्रह्मा जी कि अनेक ईश्वर हैं, जो ईश्वर का अर्थ है जिसका किसी और पर वश हो, जैसे कि सरकार, लोकल लेवल में भी सरकार है और फेडरल लेवल सेंट्रल लेवल में भी सरकार है। तो अनेक ईश्वर हैं, पर परमेश्वर जिसके सब अधीन हैं वो केवल एक ही है। और सर्व कारण कारण वो सबके कारण हैं, पर उनका कोई कारण नहीं है। तो भगवान बेशक आरंभ में हम सकाम विचार से भगवान के शरणागत हों, पर अगर हम भगवान के शास्त्रों की विधियों का पालन करते जाएंगे तो सकाम भाव से आस्ते आस्ते हम पहुंचेंगे निष्काम भाव पर। और इस श्लोक में निष्काम भाव को प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि निष्काम भाव के द्वारा भगवान के शरणागत होना सबसे सर्वश्रेष्ठ है या सबसे अच्छा है। बेशक हम सकाम भाव से पहले आरंभ करें, पर हमारा अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें निष्काम भाव से भगवान की शरण स्वीकार करनी है। चैतन्य चरितमृत की रचना एक बड़े महान भक्त कृष्णदास कविराज जी ने की थी आज से 500 साल पूर्व। इस चैतन्य चरितमृत में हमें चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य कार्यकलापों, लीलाओं और शिक्षा प्राप्त होती है। कृष्णदास कविराज जी ने ये चैतन्य चरितमृत की रचना 90 साल की आयु में आरंभ की। तो इस बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ में एक श्लोक है इस प्रकार का, कृष्णा भक्ता निष्कामा अतएव शांता, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांता। ये श्लोक सरल बंगला भाषा में है। बंगला भाषा बड़ी मीठी भाषा है और समझना कठिन नहीं है। तो इस श्लोक में कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं, कृष्णा भक्त निष्कामा, जो कृष्ण भगवान के भक्त जो निष्काम हैं, जो निष्काम भाव से भगवान के शरणागत होने का प्रयास करते हैं, सका वो हमेशा शांत रहते हैं। कृष्णा भक्त निष्कामा अतएव शांत, वो हमेशा शांत रहते हैं। और इसकी तुलना में जो दूसरे हैं आध्यात्मिकवादी, जैसे भुक्ति, जो कि कर्म खंड का पालन करते हैं पर इसके बदले में कोई सुख लाभ सुविधा चाहिए, मुक्ति, जिनको मुक्ति चाहिए, और सिद्धि, 8 प्रकार के योगिक सिद्धियां हैं। आज इस कलयुग में इन योगिक सिद्धियों को प्राप्त करना असंभव है, पर प्राचीन समय में 8 प्रकार की योगिक सिद्धियां थी। जैसे एक सिद्धि है प्रपत्ति सिद्धि। प्रपत्ति सिद्धि के द्वारा आप एक स्थान में रहकर अपने हाथ को किधर भी फैलाकर किसी वस्तु को उठा सकते हो। तो प्राचीन समय में कईयों को योगिक सिद्धियां चाहिए थी। एक रूप से कई योगिक सिद्धियां आज विज्ञानियों ने प्राप्त कर ली है किसी छोटी मात्रा में, और जिन्हें किसी प्रकार का भौतिक सुख चाहिए, ये सब जो है सदा अशांत रहते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम भाव से जब आप जुड़ते हो भगवान के प्रति अच्छा है, न जुड़ने से हजारों गुना अच्छा है, पर सकाम भाव से आगे है अगर हम निष्काम भाव से भगवान की शरण स्वीकार करो। निष्काम भाव उस स्थिति है जो कि श्लोक में बताई जा रही है, जिसमें भक्त की यही इच्छा रहती है कि मैं निरंतर सदा 24 घंटे भगवान के सेवा में जुड़े रहूं। इसका ये अर्थ नहीं कि आपको घर छोड़ने की आवश्यकता है या नौकरी या धंधा या खानदान, नहीं। उदाहरण के लिए मान लो कोई व्यक्ति बीवी बच्चों के साथ रह रहा है, तो वो किस प्रकार से निष्काम भक्ति करेगा? उसे ये सोचना चाहिए कि पूरे खानदान में आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए। अगर हम धन कमा रहे हैं तो वैसे ही धन द्वारा आवश्यकताओं को प्राप्त करना है, और आवश्यकता से अधिक जो भी संभव हो उसे हम भगवान के सेवा में लगा सकते हैं जितनी मात्रा में संभव हो। और बच्चे हैं, पत्नी है, सबको आध्यात्मिक ज्ञान देना है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं। भगवान अलग अलग समय में अवतारित होते हैं सदा धर्म के नियम की स्थापना करने के लिए। तो आज से 5000 साल पूर्व एक राजा थे, महाराज नाभी, जिनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। तो महाराज नाभी और मेरु देवी एक यज्ञ कर रहे थे इस भावना से कि हमें भगवान जैसा एक पुत्र प्राप्त हो। भगवान उनके यज्ञ से, तपस्या से बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो ये तो असंभव है, भगवान जैसे कौन हो सकता है, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। तो उनके खानदान में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया ऋषभदेव के रूप में। ऋषभदेव का संस्कृत में अर्थ है सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छा। तो ऋषभदेव भगवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है जो कि हम भागवतम के 5वें स्कंद में प्राप्त कर सकते हैं। तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं, जब तक वो अपनी औलाद शिष्य को ये ज्ञान नहीं दे सकें जिसके द्वारा वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। दूसरे शब्दों में, जैसे हम माता पिता के रूप में समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तालीम दें, उसी प्रकार इस भौतिक तालीम और शिक्षा के साथ हमें यह प्रयास भी करना चाहिए कि हम उन्हें उनके स्वरूप के विषय में समझाएं, उनका कर्तव्य क्या है। और अगर हम छोटी सी आयु से ही ये ज्ञान देना आरंभ करें तो फिर ये अनुभव होगा कि बच्चे पलेंगे बड़े अच्छे चरित्र के साथ, अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को समझते हुए और अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को भी समझते हुए। तो ये है ऋषिदेव जी का उपदेश। तो हमें ये स्थिति पर आना है कि ये समझना कि परम भगवान ही हर चीज के कारण हैं। ये है अभक्त और अभक्त की दृष्टि में अंतर। अभक्त ये सोचता है कि जो सफलता मुझे प्राप्त हो रही है वो मेरे प्रयास के कारण मुझे प्राप्त हो रही है। भक्त ये सोचता है कि भगवान की असीम कृपा से मुझे प्राप्त हो रही है। भक्त ये नहीं सोचता कि मैंने तो कुछ प्रयास नहीं करना, सब भगवान ही करेंगे। नहीं, भक्त भगवान पर बोझा नहीं बनना चाहता। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, तुम इस युद्ध में लड़ो पर किस लिए? मेरी खुशी के लिए, एक हार और जीत का सोचे बिना। तुम मेरे निमित्त मात्र बनो, मेरा चिंतन करते हुए इस युद्ध में लड़ो। उसी प्रकार हम सब निष्काम भाव से भगवान के शरणागत हो सकते हैं। वो भाग्यशाली व्यक्ति है जो ये समझ पाता है कि परम भगवान ही हर चीज के कारण है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। अब आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए साधु संगत की बहुत आवश्यकता है। ये जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान है, ये शुद्ध भक्ति का ज्ञान कैसे हमें प्राप्त होता है? शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा और साधु के द्वारा। शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी। दूसरे शब्दों में, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि साधारण प्राणी मात्र की वाणी में और भगवान की वाणी में महान अंतर है। हमारी वाणी में अनेक प्रकार के दोष हैं, पर भगवान की वाणी में किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसीलिए आज भी हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आज भी हम भगवद गीता की चर्चा कर रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जी इस पृथ्वी पर आए थे 500 साल पूर्व, वो भी गीता का उपदेश दे रहे थे। और यही उपदेश भगवान ने अर्जुन को भी दिया था 5000 साल पूर्व, और यही उपदेश भगवान ने दिया था सबसे पहले सूर्य के देवता विवासवान को भी। दूसरे शब्दों में ये उपदेश है, ये दिव्य है, इसमें किसी प्रकार की अपूर्णता या कमी नहीं। इसीलिए आज भी हम इस गीता का लाभ उठा सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप सबने शायद गीता के श्लोकों को कितनी बार पढ़ा होगा, पर कभी कोई ये नहीं कहता कि मैंने एक बार सुन लिया, एक बार पढ़ लिया, अभी और सुनने में आनंद नहीं। साधारण स्थिति में आप अखबार पढ़ते हो, पढ़ने के बाद फेंक देते हो, मैगजीन पढ़ते हो, पढ़ने के बाद फेंक देते हो या बेच देते हो या रखते हो। पर भगवान की वाणी को जो हम गीता, बाइबल, कुरान, ग्रंथ साहिब इत्यादि ग्रंथों में प्राप्त करते हैं, इन्हें तो हम जितना ही पढ़ें उतना ही कम है। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी अधिक मात्रा में हम उसे समझ पाएंगे। तो इसलिए हमें शास्त्र द्वारा ये निष्काम भक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर साधुओं के द्वारा, साधु का अर्थ है वो व्यक्ति जो कि शास्त्र के आधार पर जीवन को बिता रहा है, जिसका आचरण शुद्ध है, जो कि आचरण अपने आचरण के द्वारा शुद्ध धर्म के नियमों को प्रकट कर रहा है और जिसके हृदय में एक ही मुख्य विचार है, किस प्रकार से हर व्यक्ति को सुखी बनाना। साधु जो है अपने मन का उपदेश नहीं देता, साधु जो है भगवान की वाणी का वितरण करता है, और साधु की संगत से पापी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। साधुओं की संगत की आवश्यकता है। इसीलिए इसी चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, साधु संगत सर्व शास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संगत सर्व सिद्धि काया। लाभ मात्र का अर्थ है एक सेकेंड का 14वां हिस्सा। अगर आपको थोड़े से क्षणों की, थोड़े से समय के लिए भी साधु की संगत मिल जाए, तो इसमें आपका उद्धार हो सकता है, आपका परिवर्तन हो सकता है। आज से 5000 साल पूर्व एक राजा थे जिनका नाम था महाराज परीक्षित। उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर में, जिसे आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। और इस राजा को एक ब्राह्मण लड़के ने श्राप दिया था कि 7 दिन के पश्चात आपका अंत आ जाएगा। राजा ने अनेक साधुओं को बुलाया गंगा के तट पर, और इन सब संत महात्माओं से एक ही प्रश्न पूछा, जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। ध्यान से अगर देखा जाए तो हम सबको यह प्रश्न पूछना चाहिए, सच है कि नहीं? इस विश्व में कोई स्थान नहीं है जहां कि किसी ने देखा हो कि किसका अंत नहीं आया। चाहे आप अमेरिका में रहो या भारत में या विश्व के किसी कोने में, हम सब जानते हैं कि शरीर ने तो जन्म लेकर समय के साथ नष्ट हो जाना है। तो उनको सूचना मिल गई थी कि 7 दिन के पश्चात उनका अंत आने वाला है। तो उनका प्रश्न ये था, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो अलग अलग संतों ने अलग अलग उपाय दिया, पर वहां शुक्रदेव गोस्वामी जी भी उपस्थित थे। शुक्रदेव गोस्वामी जी कौन है? व्यासदेव जी के पुत्र। व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं, जिस अवतार में उन्होंने वैदिक शास्त्रों की रचना की। शुक्रदेव गोस्वामी जी उनके पुत्र हैं, और शुरू से ही वो आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। पैदा होते ही घर से वो रवाना हो गए थे, और शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा आपको कृष्णा के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और फिर उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, जिसके द्वारा हम भगवान की उपदेश, भगवान की शिक्षा और शुद्ध भक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम पढ़ते हैं कि व्यासदेव जी इन्होंने सब वैदिक शास्त्रों की रचना की थी, जिसके सार को प्रस्तुत किया था वेदांत सूत्र में। महाभारत की भी रचना की थी कि कम समझ सके, पर जब भी वो निराश थे, संतुष्ट नहीं थे। तो एक दिन सरस्वती नदी के तट पर जब वो बैठे हुए थे, सोच रहे थे क्या है निराशा बेचैनी का कारण, जैसे सोच रहे थे वहां पहुंचे उनके गुरु जी नारद मुनि जी। और नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारी निराशा का यह कारण है कि तुमने शुद्ध भक्ति के विषय में अधिक ज्ञान नहीं दिया। और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें प्रथम स्कंद से 12वें स्कंद तक इस विषय पर ही बल दिया गया है, और परम भगवान श्री कृष्ण के विषय में हम अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात भाग्यवान व्यक्ति है जो कि ये स्वीकार करता है क्या कि मैं हूं हर चीज का कारण। जैसे हम भगवद गीता के 2वें अध्याय में सुनकर आए हैं, आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर है। तो अगर हम इस ज्ञान को अनुकूल करना आरंभ कर दें, तो ये ज्ञान यानी भक्ति का जो ज्ञान है, इसके द्वारा केवल लाभ ही है और नुकसान नहीं। और महात्मा सह महात्मा से सुदुर्लभ, ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। आज समाज में हम देखते हैं कि कई बार लोग पखंड करते हैं कि हम बड़े महात्मा हो गए हैं, पर महात्मा के लक्षण क्या है? महात्मा का लक्षण महात्मन से माम पर था कि वह सदा भगवान के सेवा में जुड़ा हुआ है, 24 घंटे भगवान के सेवा में जुड़े रहना चाहता है, एक पल एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहता। जैसे कि एक महान संत चाणक्य पंडित ने कहा है, आयुष कशाना एक और पीना लबया स्वर्ण कोती भी। चाणक्य पंडित से आप सब शायद परिचित होंगे, उनकी शिक्षा बहुत ही प्रभावशाली है, महत्वपूर्ण है। तो चाणक्य पंडित जी ने कहा कि एक क्षण का भी अगर आप दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस खरीद कर नहीं ला सकते। एक पल का भी अगर हम दुरुपयोग करें, मान लो आपने अपने जीवन का 20 साल बर्बाद कर दिया गलत कामों में, और आप किसी को कहो ये लो 10 करोड़ रुपए, मेरे वो 20 साल वापस लेकर आओ, कोई ला सकेगा? नहीं ला सकेगा। इसलिए शास्त्रों का यह निर्णय है कि हमें एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें सदा सावधान रहना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए और दुरुपयोग नहीं। तो जो महात्मा हैं वो एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहते, वो हर पल हर सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं भगवान की सेवा में, क्योंकि वो ये स्वीकार करते हैं कि परम भगवान ही भोक्ता है, वो ही हर चीज के स्वामी हैं और हमारी खुशी है उनकी खुशी में। जैसे कि जब आप भूखे होते हो तो आपके शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं, पर जब आप खाना डालते हो आपके पेट में तो सारे अंगों में एक ताकत आ जाती है। उसी प्रकार के एकमात्र साधन के द्वारा, कृष्ण भक्ति के द्वारा, निष्काम भक्ति के द्वारा, आप अपने मन बुद्धि इंद्रियां सबको संतुष्ट कर पाओगे। इसलिए ये निष्काम भक्ति ही भगवत का निचोड़ है, और गीता में भी भगवान अंत में यही स्थापित कर रहे हैं कि निष्काम भक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और यही हमारे उद्देश्य होना चाहिए। और अगर हम भक्ति की विधियों का पालन करते जाएंगे, शुद्ध साधुओं की हमें संगत प्राप्त हो, और खास करके जिनके हृदय में यही विचार है संसार का उद्धार, साधु के हृदय में ये विचार रहना चाहिए कि समाज का सुधार कैसे हो। आज समाज में शुद्ध संतों की आवश्यकता है, जो कि हमें मार्गदर्शन दे सकें, जो कि ये बता सकें कि पृथ्वी पर जब पाप का बोझा बढ़ेगा तो उसका हमें परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। जैसे आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कितनी दुर्घटनाएं बीत रही हैं, जिनका मूल कारण क्या है कि पाप का बोझा पृथ्वी पर बढ़ते जा रहा है। तो भगवान इस बड़े प्रसिद्ध श्लोक में ये स्थापित कर रहे हैं कि मैं ही हूँ हर चीज़ का कारण, और सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? जो ये स्वीकार करता है कि परम भगवान ही हर चीज़ के कारण हैं, इसलिए मुझे हर चीज़ का उपयोग उनकी सेवा में करना चाहिए। और निष्काम भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम निष्काम भक्ति पर पहुँचें। हरे कृष्ण।